नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। फ्रैंकी फिन की पुस्तक बियॉन्ड द एजेंसी बॉक्स डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाने के प्रचलित तरीके की आलोचनात्मक व्यावहारिक पड़ताल है। यह उन फ्रीलांसरों और एजेंसी मालिकों के लिए लिखी गई व्यावसायिक मार्गदर्शिका है जो अधिक ग्राहकों के बावजूद लगातार कॉल, मीटिंग, प्रस्ताव, फॉलो अप और कठिन क्लाइंटों में फंसे रहते हैं। पुस्तक का केंद्रीय उद्देश्य ऐसी एजेंसी की रूपरेखा देना है जो फोन और अनिवार्य मीटिंग पर कम निर्भर हो, फिर भी ऊंचे मूल्य वाले ग्राहकों को आकर्षित और बनाए रख सके। फिन अपने अनुभव के आधार पर असमकालिक बिक्री, स्पष्ट निच चयन, लाभ संचय और दीर्घकालिक ग्राहक मूल्य पर जोर देते हैं। शीर्षक में फेसबुक विज्ञापनों, वेबिनारों, गूगल या SEO के बिना वृद्धि का दावा एक खास पोजिशनिंग है। हालांकि इसका अर्थ इन माध्यमों की उपयोगिता से पूर्ण इनकार नहीं, बल्कि एजेंसी की वृद्धि को केवल उन्हीं पर निर्भर न रखना है। पुस्तक का ध्यान बड़े पैमाने की टीम बनाने से अधिक मालिक के समय और कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने पर है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, फोन और मीटिंग रहित मॉडल का लक्ष्य बिक्री को खत्म करना नहीं बल्कि उसे संरचित बनाना। पुस्तक का सबसे विशिष्ट विचार फोनलेस और मीटिंगलेस एजेंसी है। फिन के अनुसार बहुत सी एजेंसियां बिक्री को व्यक्तिगत उपलब्धता के बराबर मान लेती हैं। हर संभावित ग्राहक के साथ परिचय कॉल, जरूरतों की कॉल, प्रस्ताव चर्चा और बार बार फॉलो अप मालिक के कैलेंडर को भर देते हैं। समस्या केवल समय की नहीं है। ऐसी प्रक्रिया में वही व्यक्ति बिक्री और डिलीवरी दोनों का अवरोध बन जाता है। पुस्तक इस निर्भरता को घटाने के लिए स्पष्ट संदेश, पूर्व निर्धारित योग्यताएं और रिकॉर्ड किए गए संचार जैसे विकल्पों पर जोर देती है। इसका आशय यह नहीं है कि ग्राहक संवाद का कोई मूल्य नहीं है, बल्कि तर्क यह है कि हर प्रश्न के लिए लाइव बातचीत आवश्यक नहीं होती। यदि प्रस्ताव, अपेक्षित परिणाम, प्रक्रिया, कीमत की सीमा और अगले कदम पहले से स्पष्ट हो, तो अनिश्चितता कम होती है और बातचीत अधिक उपयोगी बनती है। यह मॉडल खासकर उन सेवाओं में प्रभावी हो सकता है जिनकी डिलीवरी अपेक्षाकृत मानकीकृत है, लेकिन जटिल, बहुहितधारक या अत्यधिक अनुकूलित परियोजनाओं में कुछ प्रत्यक्ष चर्चा आवश्यक रह सकती है। इसलिए पुस्तक का व्यावहारिक सबक संचार हटाना नहीं बल्कि उसे दस्तावेजित, चयनात्मक और विस्तार योग्य बनाना है। दूसरा, 5 मिनट की लूम वीडियो बिक्री पद्धति, प्रस्ताव के स्थान पर संदर्भयुक्त प्रदर्शन। फिन की 5 मिनट की लूम वीडियो बिक्री पद्धति पुस्तक के बिक्री केंद्रित उपकरणों में प्रमुख है। इसका आधार यह है कि लंबे प्रस्ताव और सामान्य बिक्री कॉल अक्सर ग्राहक की वास्तविक स्थिति को पर्याप्त स्पष्ट नहीं करते। एक छोटी व्यक्तिगत वीडियो में एजेंसी संभावित ग्राहक की वेबसाइट, विज्ञापन, ग्राहक यात्रा या किसी दिखने वाली समस्या पर सीधे टिप्पणी कर सकती है। इससे संदेश केवल दावा नहीं रहता बल्कि निरीक्षण और संभावित सुधार की दिशा दिखाता है। वीडियो का असमकालिक स्वरूप ग्राहक को अपनी सुविधा से देखने देता है और एजेंसी को एक ही प्रारूप को दोहराने योग्य प्रक्रिया में बदलने का अवसर देता है। इस पद्धति की ताकत उसकी संक्षिप्तता और विशिष्टता में है। वीडियो को समस्या, उसके व्यावसायिक असर, प्राथमिक अवसर और एक स्पष्ट अगले कदम तक सीमित रखना जरूरी है। बहुत व्यापक मुफ्त सलाह देने पर मेहनत बढ़ सकती है, जबकि अत्यधिक सामान्य वीडियो भरोसा नहीं बनाती। इसलिए यह तरीका शोध, निच की समझ और अच्छे निर्णय पर निर्भर है। पुस्तक इसे ऊंचे मूल्य वाली सेवाओं के लिए कॉल का विकल्प बताती है, पर इसकी विश्वसनीयता तभी बनेगी जब वीडियो में बताई गई बात ग्राहक के संदर्भ से सचमुच जुड़ी हो। तीसरा, $100 बिल सब निच, कीमत पर बहस करने वालों के बजाय भुगतान क्षमता वाले ग्राहकों का चयन। पुस्तक में $100 बिल सब निच का विचार ग्राहक चयन को केवल उद्योग के नाम तक सीमित नहीं रखता। इसका उद्देश्य ऐसे छोटे बाजार खंड खोजने से है जहां ग्राहक के पास स्पष्ट आर्थिक क्षमता हो, समस्या महंगी हो और समाधान का मूल्य आसानी से समझ में आए। फिन इस दृष्टिकोण को उन संभावित ग्राहकों से दूरी बनाने के उपाय के रूप में रखते हैं जो केवल सबसे कम कीमत खोजते हैं, भुगतान टालते हैं या सेवा के महत्व को नहीं समझते। इसका व्यावसायिक तर्क सीधा है। यदि एजेंसी का लक्ष्य बहुत व्यापक बाजार है तो उसे अनेक असंगत जरूरतों, अलग संदेशों और तीव्र मूल्य प्रतिस्पर्धा से जूझना पड़ता है। इसके विपरीत, एक चुने हुए उपक्षेत्र में भाषा, उदाहरण, पेशकश और प्रमाण अधिक प्रासंगिक बनाए जा सकते हैं। इससे बिक्री में ग्राहक को शिक्षित करने की लागत भी घट सकती है। फिर भी भुगतान क्षमता अपने आप में अच्छा ग्राहक होने की गारंटी नहीं है। एजेंसी को निर्णय लेने की गति, सेवा के अनुकूलता, अपेक्षाओं और लाभप्रदता को भी जांचना होगा। इस विचार का उपयोग करते समय नैतिक और व्यावहारिक प्रश्न यही है कि निच केवल अधिक पैसे वाला न हो, बल्कि वहां एजेंसी का समाधान मापने योग्य उपयोगिता भी पैदा करे। चौथा, एक मुश्त खरीद से वार्षिक ग्राहक मूल्य तक लाभ संचय की सोच। फिनिक रेस्तरां के $12.50 के एक मुश्त ग्राहक को सालाना $5,200 के ग्राहक में बदलने का उदाहरण देते हैं। पुस्तक इस उदाहरण का प्रयोग लाभ संचय के सिद्धांत को समझाने के लिए करती है। मूल विचार यह है कि किसी व्यवसाय की आय केवल पहली बिक्री से नहीं मापी जानी चाहिए। ग्राहक की आगे की जरूरतें, दोबारा खरीद, पूरक सेवाएं और लंबे समय की उपयोगिता अक्सर प्रारंभिक लेनदेन से कहीं अधिक मूल्यवान होती हैं। एजेंसियों के संदर्भ में इसका अर्थ है कि केवल नया अनुबंध जीतने के बजाय ग्राहक के परिणाम, निरंतर जरूरत और संबंध की संरचना पर ध्यान दिया जाए। यदि सेवा का प्रभाव ग्राहक के व्यवसाय में समझ में आता है तो आवर्ती कार्य, समीक्षा, विस्तार या अन्य उपयुक्त पेशकशों की संभावना बढ़ती है। यह दृष्टिकोण अधिग्रहण लागत को अधिक ग्राहकों पर फैलाने में भी मदद कर सकता है, हालांकि इसे हर ग्राहक को लगातार अधिक बेचने की चाल नहीं समझना चाहिए। बिना परिणाम दिए विस्तार मांगना विश्वास को नुकसान पहुंचाता है। पुस्तक से निकलने वाला उपयोगी निष्कर्ष यह है कि एजेंसी को पहले ग्राहक के लिए वास्तविक मूल्य साबित करना चाहिए, फिर उसकी बदलती जरूरतों के अनुरूप दीर्घकालिक पेशकश बनानी चाहिए। यही जीवन भर संतुष्ट ग्राहकों के दावे का व्यावसायिक आधार है। अंत में, स्वतंत्रता और लाभ का संतुलन एजेंसी मालिक को संचालन का स्थायी अवरोध बनने से रोकना, बियॉन्ड द एजेंसी बॉक्स एजेंसी वृद्धि को केवल राजस्व, कर्मचारियों या ग्राहकों की संख्या से नहीं आंकती। फिन का मुख्य विरोध उस स्थिति से है जिसमें मालिक की आय तो बढ़ती है लेकिन वह हर बिक्री, हर ग्राहक समस्या और हर निर्णय में अनिवार्य बना रहता है। वे इसे ऊंची आय वाली कैद जैसी स्थिति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए पुस्तक की तकनीकें, जैसे चुना हुआ निच, संक्षिप्त वीडियो बिक्री और व्यवस्थित ग्राहक अनुभव, एक दूसरे से जुड़ी हैं। इनका साझा उद्देश्य निर्णयों की पुनरावृत्ति घटाना और मालिक की उपलब्धता पर निर्भरता कम करना है। यह दृष्टिकोण सेवा व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें अनियोजित संवाद आसानी से डिलीवरी समय को खा जाता है। फिर भी स्वतंत्रता का अर्थ ग्राहक सेवा से दूरी या कम जवाबदेही नहीं होना चाहिए। प्रभावी एजेंसी को जवाब देने के मानक, कार्य की सीमाएं, रिपोर्टिंग की लय और समस्या बढ़ने पर संपर्क का स्पष्ट मार्ग तय करना पड़ता है। पुस्तक की उपयोगिता इसी पुनर्परिभाषा में है। बेहतर एजेंसी वह नहीं जो हर समय व्यस्त दिखे, बल्कि वह है जो ग्राहकों को भरोसेमंद परिणाम और स्पष्ट संचार देते हुए मालिक के समय को अनावश्यक मांगों से बचा सके। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन नए फ्रीलांसरों, छोटे डिजिटल मार्केटिंंग एजेंसी मालिकों और अनुभवी संचालकों के लिए सबसे उपयोगी है जो ग्राहक पाने की कोशिश में लगातार कॉल और प्रस्ताव भेजते हुए थक चुके हैं। जिनकी सेवा अभी स्पष्ट नहीं है, उन्हें भी इससे निश्चयन, ग्राहक योग्यता और पेशकश के बारे में उपयोगी प्रश्न मिल सकते हैं। पाठक को इसे तैयार बिक्री नुस्खों के संग्रह की जगह कार्यप्रणाली बदलने वाली मार्गदर्शिका की तरह पढ़ना चाहिए। इसकी व्यावहारिक उपयोगिता इस बात में है कि यह बिक्री, ग्राहक चयन और प्रतिधारण को अलग अलग विभागों की तरह नहीं देखती। यह दिखाती है कि बेहतर ग्राहक चयन से बिक्री आसान हो सकती है, स्पष्ट असमकालिक संचार से समय बच सकता है और परिणाम केंद्रित सेवा से ग्राहक का दीर्घकालिक मूल्य बढ़ सकता है। समान एजेंसी पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर बड़े विज्ञापन बजट, जटिल फनल या अत्यधिक मीटिंग आधारित सलाह पर कम निर्भरता है। इसकी जगह यह लूम वीडियो चुने हुए उपनिच और लाभ संचय जैसे अपेक्षाकृत सीधे साधनों को केंद्र में रखती है। फिर भी पाठक को हर सिद्धांत को अपनी सेवा की जटिलता, ग्राहक जोखिम और बाजार के अनुसार परखना चाहिए। जिन एजेंसियों में रणनीति अत्यधिक अनुकूलित या कई निर्णयकर्ताओं पर निर्भर है, वहां पूरी तरह मीटिंग रहित मॉडल संभव नहीं होगा। इसके बावजूद पुस्तक का केंद्रीय प्रश्न मूल्यवान है। क्या एजेंसी की प्रक्रियाएं ग्राहक परिणाम और मालिक की स्वतंत्रता दोनों को साथ मजबूत करती हैं? इसी प्रश्न के कारण यह सामान्य लीड जनरेशन पुस्तकों से अलग दिखाई देती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं फ्रैंकी फेन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।